ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आययाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सर्वसाहूणम्।
जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए जो प्रयोजनभूत सात तत्व है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ अभी हम सात तत्वों संबंधी जो जीव की विपरीत मान्यता है उसकी चर्चा करेंगे। सात तत्व तो जो प्रयोजनभूत तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा तो वैसा ही रहता है, परंतु जीव उसके बारे में कुछ अन्य सोच लेता है, उसका स्वरूप अन्यथा अपनी कल्पना में मान लेता है। तत्व तो जो जीव है तो जीव ही है, जो अजीव है वो अजीव ही है। आश्रय बंध सर्व निजना मोक्ष का स्वरूप जैसा है वैसा तो अनादि से अनंत काल तक वैसा ही रहने वाला है, परंतु जो जीव उसके बारे में गलत मान्यता करता है उसी को तो मिथ्यात्व कहते हैं। सात तत्वों के बारे में उसकी जो मान्यता में भूल हो रही है वो भूल को ही यहाँ मिथ्यात्व कहा है। तो वो कैसी कैसी विपरीत मान्यताएं कर सकता है या करता है उसकी यहाँ हम चर्चा करेंगे। ये जो 22 नंबर का चैप्टर है, पत्रांक 22, यानी जब सात तत्वों की भूल, यानी ऐसी बात जब हम कहें सात तत्व की भूल, तो सात तत्व संबंधी जीव की भूल। तत्वों में तो कुछ भूल होने का सवाल ही नहीं है, भूल कहाँ हो रही है? जीव की मान्यता में। यानी सात तत्व ये तो फैक्ट है, वस्तु स्थिति है, परंतु जीव उसको अन्यथा मान लेता है अपनी बुद्धि से या किसी के उपदेश से, तो उसको हम कहेंगे ये मिथ्यात्व चल रहा है उसका। वो गृहित है कि अगृहित है इसकी चर्चा भी यहाँ नहीं करेंगे हम। ये सात तत्व संबंधी वो कैसी कैसी विपरीत मान्यता कर रहा है, अपने में ये मान्यता है कि नहीं, ये हमको अवलोकन करना है। कोई मान्यता की बात बताएंगे नहीं, नहीं वो ऐसा सोचता है, वो फलाना वैसा सोचता है, उसकी बात नहीं करनी। ये विपरीत मान्यता अपनी अपने में हो, अपने अभिप्राय में कहीं छुपे हुए, तो हमें उसको ही देखना है। अगर नहीं तो अच्छी बात है, और हो तो उसको सुधारना है। तो अभी हम यहाँ देखेंगे ये जो जीव और अजीव तत्व संबंधी क्या क्या मान्यता हो सकती विपरीत, उसको पहले देखेंगे। आप कहेंगे सात तत्वों के नाम बताए आपने, डेफिनेशन बताए, तो पहले विपरीत मान्यता ही क्यों ले रहे हैं, है ना? क्योंकि अनादि से हम उसी को कर रहे हैं और उसके साथ हम परिचित है और हमें भूल निकालनी है, तो पहले उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। जैसे कोई रोगी जाता है वैद्य के पास, तो वैद्य तो उसके लक्षण देखकर पहचान लेता है कि ये रोग है, तो फिर पूछता है ना, रोगी तो इतना ही मालूम है कि अरे ये कुछ सिर दर्द हो रहा है, बुखार आया, तो क्या गले में दर्द है, क्या आपको बॉडी है, क्या ये उसके लक्षण ये स्वयं ही बता देता है, तो उसको पता है हाँ 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 नहीं मुझे ऐसी सचमुच ये तकलीफ हो रही है, तो उसको विश्वास हो रहा है। वैसे यहाँ ये उसकी मान्यता में कैसी कैसी भूले हैं ये यहाँ बता रहे हैं। तो जीव और अजीव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता एक साथ बताएंगे, क्यों? क्योंकि जीव और अजीव तत्व को ही इसने एक में एक माना है। अजीव को जीव और जीव को अजीव मानता है, तो वो दोनों की एक साथ उन्होंने उस संबंधी जो विपरीत मान्यता है एक साथ बताई है। तो वो जीव क्या क्या करता है, ये पत्रांक 22 में जो दूसरा पेज है उसमें तीन पॉइंट दिए हैं कि दोनों को यानी जीव और अजीव को एक मानता है, या दूसरी भूल क्या करता है, अजीव को जीव मानता है यानी शरीर ही मैं हूं मानता है। तीसरी भूल क्या है, जीव को अजीव मानता है। अजीव को जीव मानना कहो या जीव को अजीव मानना कहो, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे हम, तो शरीर ही मैं हूं और मैं शरीर हूं, इस तरह से वो दो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी वो क्या मान रहा है, शरीर और आत्मा मिलकर जीव है, ऐसी उसकी मान्यता है मिथ्या। शरीर से मैं कुछ भिन्न तत्व हूं इसकी उसको पहचान नहीं, क्योंकि जिस भव में जाता है, कोई कीड़ा मकोड़ा भी हो जाता है, पशु पक्षी हो जाता है, या मनुष्य होगा, देवनारकी होगा, तो मिथ्यात्व के कारण यही मैं हूं मान लेता है। शरीर से मैं भिन्न हूं ये बात ही उसको पता नहीं चलती है। जैसे आपको पहले उदाहरण दिया था ना, नींबू लाने को बोला और उसने गाजर लाया, ककड़ी लाया, जो कोई लाए, यानी वो दोनों ही को नहीं जानता है, ना नींबू को जानता है ना ककड़ी को जानता है। ककड़ी को जानता तो नींबू समझकर वो नहीं लाता, और नींबू को जानता तो वो ककड़ी लाता नहीं, इसलिए दोनों संबंधी उसकी गलत मान्यता है, गलत ज्ञान है। ऐसे ही यहाँ जीव और अजीव दोनों को ही नहीं जान रहा, दोनों ही संबंध में भूल कर रहा है।
वो तो जानते हैं इधर से इधर आया, तो उधर तो मेरा शरीर डिफरेंट था, इधर डिफरेंट था, तो उससे नहीं।
हाँ, आप ऐसे कहते हैं जो अवधि ज्ञानी है या जो जिसको जाति स्मरण है, पूर्व भव का ज्ञान है, तो वो समझता है कि मैं पूर्व में अमुक अमुक था और अभी अमुक अमुक हूँ, फिर भी उन शरीरों के साथ उसका एकत्व बना रहता है। हाँ, फिर भी क्योंकि मैं उसमें से मैं भिन्न जीव हूँ ये बात उसके ख्याल में नहीं आती, या तो उसके पूर्व पर्याय के साथ बहुत एकमेक पना रह जाता है।
ये विभंग ज्ञान वाले की,
विभंग ज्ञान वाले की बात है, अवधि ज्ञानी ने को अवधि ज्ञान की बात चल रही है आपकी, तो वहाँ भी ऐसा ही उसका होता है।
जानते हुए भी
वो तो सम्यक दृष्टि तो जानता है मैं तो भिन्न ही हूँ, वो तो जानता ही है। यहाँ तो वो जीव और शरीर को एकमेक कर, मैं ऐसा था और मैं अभी, यानी मैं मान लेते कि मैं अमुक व्यक्ति था, मैं अभी अमुक व्यक्ति हो गया हूँ, यानी वहां भी शरीरधारी था, यहाँ भी शरीरधारी हुआ हूँ, तो उसमें जीव की भिन्नता नहीं सोचता है वो, यानी वहां भी शरीर भिन्न था और यहाँ भी शरीर भिन्न, ऐसा नहीं समझता। देखो, अज्ञानी जीव भगवान को भी नमस्कार करता है तो अपने को शरीर सहित मानता है ना, तो भगवान को भी शरीर सहित मानता है, उनके भी शरीर को देख देख कर ये भगवान है ऐसे कहते, देखो ये भगवान का स्वरूप कैसा है, तो वो बाहर ही वर्णन में वो रीन जाएगा कि उनके कितना चमत्कार है, उनका शरीर कैसा है, तो शरीर की भी स्तुति की जाती है तीर्थंकरों की, परंतु उनके आत्मा तो भिन्न है, और उनके गुण कौन से है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, परंतु ये दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, ये शरीर को ही अरहंत मान लेता है, क्योंकि इसने यहां भी वैसा ही मान लिया है, तो इसको यहां अगर भेद विज्ञान हो जाए या वहां अगर भेद विज्ञान करता है अरहंतों को, शास्त्र में कहा ना जो अरहंतों को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है उसका मोह यानी मिथ्यात्व क्षय हो जाता है। अरिहंतों को कैसे जानेगा कि वो शरीर से भिन्न है, वो भी जीव द्रव्य है, द्रव्य से जाना, अनंत गुणों का पिंड है ये, असंख्यात प्रदेश, ये चेतना ज्ञान आदि अनंत गुण का धारी है, और पर्याय से कैसे जाना, वहां भी ज्ञान दर्शन चारित्र सबकी पर्याय एक एक समय में हो रही है, और वहां भी उत्पाद व्यय और ध्रुवता सहित है, और अपने को भी वैसा जानेगा तो उसका मोह क्षय हो जाएगा, तो उसने भगवान को भी सही नहीं जाना। ये उसकी जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल हो रही है, ये भूल वो अपने में भी करता है और पर में भी करता है, सामने वाले को भी वो शरीर रूप से ही जानता है, अपने को कैसा जानता है, मान लेते हैं अभी पैरालिसिस हो गया मुझे, तो कैसा फील करेगा, अरे मैं ही हिंदू हिंदू बुला हुआ, और कोई धट्टा कट्टा हाइट वाला होगा तो क्या सुपीरियर मानेगा, और कोई ठिंगना होगा तो अपने को इन्फीरियर मानेगा, किससे माना उसने, शरीर से मैं हूं, मैं शरीर रूप हूं और मैं दूसरों से हीन हूं, कालेपन हो, कोई रोग हो, कोई जिसको कहते हैं विकलांग हो जाते हैं, वो अपने को क्यों हीन महसूस कर रहे, अपने को वो शरीर रूप मानते हैं, ये उनकी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल चल रही है। जब हम समझ लेते कि मैं तो ज्ञान मैं हूं, शरीर से भिन्न हूं, फिर शरीर काला हो, दुबला हो, लंगड़ा हो, लूला हो या अच्छा धट्टा कट्टा हो, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, तो वो सामने वाले को भी जीव तरीके से पहचानता है और अपने को भी जीव तरीके से, फिर वो शरीर में उसकी आत्मबुद्धि नहीं है, तो सामने वाले जीव को भी वो ये तो जीव भिन्न है और इसका शरीर भिन्न है ऐसा समझता है। तो उसके दूसरों के प्रति भी ऐसे दया भाव भी होगी, यहाँ भी इतने अनंत जीव रहते हैं, वो भी मेरे जैसे जीव है, ऐसी बातें ख्याल में आती है उसको, तभी उसको कहेंगे ये सच्ची दया है। तो ये उसकी जो भूल हो रही है कि शरीर और मैं मिलकर मैं हूं, ये कब से चल रही है? अनादि से चल रही है। हम देखते ना अभी शास्त्रों में तो देखा हमने, तत्वार सूत्र में लिखा है उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। छड़ाला में भी लिखा है चेतन को है उपयोग रूप, चेतन यानी जीव द्रव्य है, उसका लक्षण क्या है? तो उपयोग, उपयोग यानी ज्ञान दर्शन वाला उपयोग, जिसको हम चेतन चैतन्य उपयोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक जीव द्रव्य और अनंत परमाणु है, सभी मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, उसको पहचानना कैसे? तो लक्षण के द्वारा पहचानना। तो जीव का लक्षण क्या है? जानना जानना जानना, ये जीव का लक्षण। और पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल का लक्षण है। तो दोनों को लक्षणों के द्वारा भिन्न पहचानना, ये भूल टालने का उपाय है। तब तक हम क्या ये सब मिलकर मैं हूं मान लेता है। देखो इसमें क्या है, एक है आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु। आत्मा में दो बातें हो रही है, ज्ञान आदि उसके गुण है, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय उसके विभाव भाव है। दोनों होते हुए तो ख्याल में आता है ना कि मुझे कुछ न कुछ समझ में आता है, ये बात तो उसके अनुभूति की बात है, क्योंकि मैंने अभी इसको जाना उसको जाना उसको जाना, फिर अपने में राग द्वेष के उत्पत्ति परिणाम भी हो रहे हैं उसको भी जान रहा है, और शरीर में जो कोई स्पर्श रस गंध वर्ण की जो बातें चल रही है, कोई गर्म हुआ ठंडा हुआ जो कोई बातें चलती है, वो कोई यानी उसका सॉफ्ट स्किन है या कठिन है या हेयर कोई सॉफ्ट है या कुछ, तो ये सबको जान रहा है। अब कैसा जान रहा है, कैसा मान रहा है, ये सब मिलकर मैं हूं, ख्याल है ना कि मैं जानता हूं। अब ये अकेला जानता हूं इतने ज्ञान की पर्याय में हीनाधिकता भी हो रही है, इंटेलिजेंस जो है वो किसी के कम है किसी के ज्यादा है। अब क्या मानेगा, जो इंटेलिजेंट है मान लेते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, अब क्रोधादि कषाय में कोई मंद कषाय वाला होगा, ये मैं पुण्य वाला हूं मैं दयालु हूं बहुत, क्या माना उसने? मैं इंटेलिजेंट हूं मैं दयालु हूं और ये मैं गोरा हूं मैं धट्टा कट्टा हूं, ये सब मिलकर मैं हूं मान लिया। यानी जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य को एक माना ही माना, इसके गुण क्या है? ज्ञानादि गुण है, क्रोधादि विभाव है, और यहां स्पर्श रस गंध वर्ण, इन गुणों को भी ये मैं हूं ये मेरे है माना। इनकी भी पर्याय होती है ज्ञान की और क्रोधादि की, और यह स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय होती है, ये मेरी पर्याय है माना। यानी मेरा द्रव्य गुण पर्याय और ये पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय, ये सब मिलकर खिचड़ी कर दिया और ये मैं हूं मान लिया उसने। भले यहां पड़े हैं परंतु हम उसको लक्षण से पहचानना है कि इसमें से जो ज्ञान है वो मेरा स्वरूप है कायमी, क्रोधादि है मेरे में उत्पन्न होने वाले विभाव है, उसको तो हम आश्रव तत्व में डालेंगे बाद में, और ये जो पुद्गल है वो तो मेरे से भिन्न तत्व है अजीव तत्व है। अभी हम मनुष्य है ठीक है ना, मनुष्य के जैसे क्रियाएं भी चलेगी, कैसे समझना है? ये ज्ञान दर्शन वाला मैं हूं जीव तत्व, मेरे में उठने वाले क्रोधादि जो कषाय है वो है क्या है? आश्रव तत्व, ये मेरे से भिन्न है, और शरीर वगैरह जो है वो क्या है? वो अजीव तत्व है, वो भी मेरे से भिन्न है। इसको कहेंगे भेद ज्ञान। अभी क्या कर रहा है? तीनों को मिलकर मैं हूं मान रहा है, और भी उसकी विपरीत श्रद्धा चलेगी। आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या करेगा? आश्रव ने पुण्य करते करते मुझे संवर प्रकट होगा मानेगा। ये कैसी कैसी विपरीत मान्यता है हम देखेंगे। अभी तो हम जीव और अजीव तत्व संबंधी बात कर रहे हैं।
विचार आते हैं
परंतु विचार सही भी आ सकते हैं ना, वो तो वो ज्ञान है, विचार है वो ज्ञान की पर्याय, मन के द्वारा जो सोचना है वो ज्ञान की पर्याय, वो सही भी सोचना हो सकता है गलत भी हो सकता है, कल्पना में भी हम सोचते हैं ना, हमने कल्पना में सोच लिया कि कोई गधा है हमारा, उसको सिंह उग गए तो कल्पना सद भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, असद भी हो सकती है। तो ये तो विचार में, ज्ञान में ऐसी बातें आ सकती हैं। तो ये क्या करता है अनादि जीव, अनादि काल से ये क्या करता है देखो, एक तो शरीर को ही मैं हूं मान लेता है, शरीर से एकत्व किया, इतना करके रुकता नहीं है। धन संपत्ति, बाल बच्चे, जो कोई गाड़ी है, हाँ, बंगला है, ये सारे भिन्न पदार्थ, ये सोफा मेरे से भिन्न है, परंतु क्या मानता है ये मेरा है और इनके कारण मैं सुखी हूं। ये उसकी भूल उतनी नहीं मिटती। चढ़ाला में लिखा है ना कि मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव, यानी ये शरीर मैं हूं, ये बाग बगीचा सब मेरा है और इनके कारण मैं सुखी हूं, ये मेरे चार बच्चे तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी क्यों हूं, मेरे पास धन नहीं इसलिए मैं दुखी हूं, मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मैं दुखी हूं। ये इसकी फिर सुख की और दुख की परिभाषा कल्पना ऐसी चलती है, ये कल्पना में ही सारा रोग है उसका। कल रात को सपने में मुझे भयंकर कोई रोग हुआ, हार्ट अटैक आ गया, तो यहाँ कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है भाई? तो वो ट्रीटमेंट करेगा मेरा? मेरे सपने में मुझे हार्ट
अटैक,
हाँ, तो उठना यही एक उपाय, क्योंकि कल्पना में है ना, सपने में है क्या ला? ऐसे ही ये हमने कल्पना में सब मान लिया, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, शरीर रूप में हूँ, गया शरीर तो अजीव है, वो नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूँ, वो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट है कर्मों के साथ, अपने के साथ कुछ नहीं है,
कर्मों के साथ है।
क्या कॉन्ट्रैक्ट है? मैं इतने साल तक रहूंगा, ये मेरा है कॉन्ट्रैक्ट, उसी समय निकल जाएगा ना, जीव ही उसको छोड़कर चला है। शरीर का एक एक परमाणु सुनिश्चित समय में आता है और चला जाता है, वहां कायम रहने वाला तो जीव है, परंतु जीव इतना मूर्ख है कि ये जो परमाणु आते हैं तो ये मैं, ये मेरे, और चले जाते हैं तो हाय मैं मर गया। जैसे वो शास्त्र में आती है पागल की कथा आती है कि एक पागल रोज बैठता था नदी किनारे जाके, एक दिन क्या हुआ कि राजा का सैन्य आ गया नदी के उस पार, उन्होंने वहां पड़ाव डाला, ये तंबू वगैरह उन्हें बताए, सारे टेंट्स वगैरह बनाए, फिर खाना पकाया, सब खाए, फिर रात में आनंद कुछ मनाया, तो ये भी बहुत खुश खुश होने लगा ये सब देख देख कर, और सुबह उठते ही वो क्या आगे चले गए, तो रोने लगा। ऐसे ये पागल क्या करता है, जो कोई संयोग आए तो ये मेरे है करता है, हा? और फिर छोड़ के चले जाते हैं तो रोने लगता है।
अगला नहीं याद है और जो फ्यूचर है वो जानता ही नहीं है, इसी कारण है वर्तमान में रोना ही है।
ऐसा ही है यानी ये जो मूल भूल कहा है, शरीर मैं हूं, फिर शरीर से उत्पन्न जो कोई निमित्त से जो कोई हुए बाल बच्चे वो मेरे हैं, उसमें इतनी आत्मीयता हो जाती है, अरे बच्चा रहेगा तो मैं ही जिंदा रहूंगा इसके रूप में, ऐसा ही कहता है, होता है कि नहीं? हम लौकिक में देखते हैं और मर गया तो हाय मैं मर गया, मैं लुट गया। जवान बेटा मर गया तो कैसा होता है, माँ दुख नहीं होगा वो बात नहीं है, परंतु उसमें भी अगर कोई जानता है पहले से, अरे ये तो भिन्न द्रव्य है, इसकी पर्याय तो इसके अपने क्रम के अनुसार हो रही है, तो उसमें भी दुख में भी समाधान होगा उसका कुछ, और ये ऐसा पागल की भांति रोता है कि कुछ पूछो मत, ख्याल है ना? यानी उसकी क्या होता है, ये यह मैं हूं ऐसी आत्मबुद्धि शरीर में, फिर ये मेरे हैं ऐसी, ये सारी आत्मा की और पुद्गल की दोनों की मिलकर जो अवस्थाएं हो रही, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूं, जैसे ये बोलने का कार्य मैं करता हूं, देखो हाथ हिलाने का कार्य मैं करता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं भाग सकता हूं, मैं सुबह रोज वॉक को जाता हूं, ये क्या है, शरीर की क्रिया और आत्मा की क्रिया, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। वो क्या मानता है, ये मेरी क्रिया है, मैं कर सकता हूं, देखो मैं इतना वजन उठा सकता हूं, मैं अच्छे अक्षर लिख सकता हूं, ये सारी क्या हो रही है, पुद्गल की क्रियाएं हो रही है, और जीव का उसमें निमित्त है। हम कहेंगे यह निमित्त है, तो मैं निमित्त तो हूं ना, निमित्त कुछ नहीं करता तो मैं निमित्त तो हूं ना, यानी मैं कुछ नहीं करने वाला तो हूं ना, यानी वहां भी किसी न किसी फॉर्म में अपना कर्तृत्व वो जाहिर कर, ये कर्तृत्व बुद्धि है। कर्तृत्व बुद्धि का अर्थ होता है खोटी मान्यता, यह मेरा कार्य है मैं कर सकता हूं ऐसे मानता है। और भोक्तृत्व बुद्धि यानी जो इंद्रियों के द्वारा जानने का कार्य चल रहा है, तो मैं पर पदार्थों का भोग करता हूं, देखो मेरे ये अच्छा बैठने के लिए है, कितना सॉफ्ट है, मैं इसका भोग कर रहा हूं, खाना खाता है तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं, भोग कर रहा हूं, ऐसा मानता है। ये सारी उसकी चारों ही बातें चलती है, कौन अहम बुद्धि यानी यह मैं हूं, मम बुद्धि ये मेरे है, कर्तृत्व बुद्धि यानी मैं इनका करता हूं, और भोक्तृत्व बुद्धि यानी मैं इनका भोगता हूं। ये जीव और अजीव दोनों में ऐसी उसकी चलती रहती है, विपरीत मान्यता चलती रहती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर के और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। जब यहां बोलने की इच्छा हो गई, उसके तो वचन योग होता है, जीव में प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, और वहां पुद्गल भी जुड़े हैं, उनकी भी क्रिया होती है उनके अपने से, तो एट अ टाइम दोनों क्रिया होती है, तो इसको क्या लगता है ये मेरी क्रिया है मैं इसको करता, तो उसकी मिथ्या मान्यता और दृढ़ हो जाती। अब हम आश्रव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता क्या है उसको देखेंगे उसके आगे की। तो आश्रव ने हमने कौन कौन से देखे थे? मुख्यतः ने मोह राग द्वेष, और डिटेल में बताना है तो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, ये आश्रव है। तो ये कैसे है? तो विभाव भाव है, जीव का स्वभाव नहीं है, विपरीत भाव है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सिद्ध अवस्था ये जीव की शुद्ध अवस्था है, तो उसमें तो मोह राग द्वेष का पूर्ण अभाव हुआ है, अर्यंतों को भी नहीं है, तो जो विभाव भाव है वो निकल गया है और स्वभाव पर्याय प्रकट हुई है। तो ये विभाव कैसे है? तो दुखरूप भाव है, जिस काल में प्रकट हुए है उसी काल में दुखरूप है। आप कहेंगे शुभ भाव तो सुखरूप है कि नहीं है? नहीं है। हमें पूजा करना है तो वो भी आकुलता वाला भाव है। हमें यात्रा करनी है तो यात्रा करने हम कहीं जाना है, हम समय शिखर जाना है, तो उसके लिए भी हम सब प्लानिंग करेंगे, फिर कैसे जाना, क्या करना, हमको वहां क्या करना है, ये सब क्या है? वो आकुलता वाला। आप कहेंगे नहीं हम घर बैठे पूजा करेंगे, वहां तो आकुलता नहीं होगी, तो करो कितने घंटे करना चाहते हैं? आधा घंटा हुआ, पौना घंटा हुआ, दो घंटे हुए, चार घंटे? आप कहेंगे इतना कोई पूजा करता है थोड़े? तो ये भी उसी काल में दुखरूप भाव है। क्यों? क्योंकि सुख तो आत्मा में है, तो शुद्ध भाव जो है वो सुखमय भाव है, सुखरूप भाव है, उसके अलावा जो अन्य जो है वो दुखरूप भाव है। देखो जैसे पानी का स्वभाव कैसे है? शीतल, शीतल, पर्याय में उष्ण हो रहा है अग्नि के संयोग में, वो उसका विभाव भाव, ऐसा समझना, वो विभाव भाव है। क्यों? वो शीतलता कायम रहने वाला भाव है, और ये जो गर्म हुआ है वो थोड़े काल के लिए हुआ है, वो भी चले जाने वाला है, और उसका कायम स्वभाव शीतलता है। ऐसे हमारा कायमी स्वभाव क्या है? तो ज्ञान और आनंद, ये हमारा स्वभाव भाव है। और अभिपर्याय में क्या हो रहा है? विभाव भाव, ये मिथ्यात्व राग द्वेष जो है वो विभाव भाव है, और वो अभी वर्तमान में दुखरूप भाव है, और उसके फल में क्या होता है? कर्म का बंध होता है। जब कर्म का उदय होता है तब फिर इसमें ये दुख की परंपरा चलती है, इसलिए उसके दुख का कारण कहा है, और उसको कहा यह अपवित्र है। क्यों? बंध पड़ता है, अपवित्र भाव है। आत्मा कैसा है? पवित्र है। और ये विभाव भाव कैसे है? अपवित्र है। इस तरह से ये आश्रव को ही सुखमय मानता है, ये उसकी आश्रव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता। आश्रव दुखकारी होते हुए भी अभी उसकी क्या क्या भूल करता है हम देखेंगे। ये आश्रव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता लिखा है ना, उसमें चार पॉइंट्स लिखे, राग द्वेष मोह यानी आश्रव, ये क्या है? विभाव भाव है। उसको क्या मानता है? अपना स्वभाव मानता है, मानता है ना, मैं दयालु हूँ, वो अमुक व्यक्ति वो क्रोधी है, मैं बहुत सहनशील हूँ, ये क्या माना उसने? ये विभावों को अपना स्वभाव मान लिया। दूसरी बात, रागादि यानी राग द्वेष मोह और आत्मा है तो भिन्न भिन्न, क्योंकि मैं तो जीव तत्व हूँ और ये कौन सा तत्व है? रागादि आश्रव तत्व, आश्रव तत्व। परंतु क्या मानता है? राग द्वेष और ज्ञान ये एक में हुए ऐसा मानता है, उनकी भिन्नता इसके ख्याल में नहीं आती, ये उसकी भूल है। ज्ञान और राग एक में हो गए ऐसा मानता है। तीसरी बात क्या है? ये रागादि जो आश्रव है दुख रूप है, बंध का कारण है और भविष्य काल में दुख के हेतु इन्हें कारण है, क्योंकि वो कर्म बंध करते इसलिए, उसको क्या मानता है? सुख रूप मानता है। जैसे पुण्य वर्तमान में दुख रूप है क्योंकि वो शुद्ध भाव नहीं है, बंध का कारण है और फिर आगामी भविष्य काल में भी दुख का कारण। आप कहेंगे अरे पुण्य से तो अच्छे संयोग मिलेंगे, परंतु तो संयोग भोगने के भाव ये तो दुख रूप है ना, इच्छा होना ये दुख है। अभी पुण्य करने से स्वर्ग में जाओ और सुख भोगो, वो सुख नहीं है, वहां तो इच्छा है, विषयों की इच्छा, वो दुख है। तो भविष्य काल में भी दुख उत्पन्न होगा, ये क्या मानता है? उसको सुख रूप मानता है, ये तीसरी भूल। अब देखो, संयोग से मुझे दुख होता है, क्या मानता है? संयोग से दुख होता है। प्रतिकूलता मुझे क्रोध उत्पन्न कराती है। अपने में जो विभाव भाव है वो अपना विभाव है, ये निमित्त के कार्य होता है, माना ना, ये इसमें आ गया। यहाँ कार्य क्या हुआ? राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, दुख क्यों हुआ? राग द्वेष के कारण। क्या मानता है? संयोग के कारण मुझे दुख हुआ। ये प्रतिकूलता है, हमारा पड़ोसी बहुत तकलीफ देता है इसलिए मुझे क्रोध आया, यानी निमित्त ने कार्य किया ऐसा मानता है, ये उसकी भूल है। अब हम बंध तत्व संबंधी देखेंगे क्या विपरीत मान्यता है इसकी। तो चढ़ाला में ऐसा कहा है, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, यानी शुभ और अशुभ जो भाव किए हैं उसका फल क्या है? अभी वर्तमान में जो हमें प्राप्त जो संयोग है उसमें क्या करता है? रति अरति करे, उसमें अच्छा या बुरा मानता है। कैसे? निज पद विसार, निज पद ने अपने आत्मा को भूलकर प्राप्त संयोगों में ही सुख दुख मानता है, उसमें अच्छा बुरा मानता है। तो हमने किसी को पूछा, ये अच्छे संयोग है तो क्या हमने पुण्य किया था ना, इसलिए हमें अच्छे संयोग है, यानी अभी अच्छे संयोगों में उसको रुचि लगती है, यानी उसने पुण्य को अच्छा माना है, यानी पुण्य बंध को अच्छा माना। तो जो बंध को अच्छा मानता है उसको मोक्ष अच्छा नहीं लग सकता, ख्याल में है ना? क्या कहता है वो? हमने पुण्य किया था, हम पुण्य का फल भोग रहे हैं, इसलिए मुझे अच्छा मिला, यानी पुण्य करने जैसा माना कि नहीं माना उसने? जिसको संयोगों में रुचि है उसकी बात चले, संयोग हो गए, चक्रवर्ती कोई भी संयोग है, परंतु वो सम्यक दृष्टि है तो वो उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं मान रहा है, ये बात होती है, ये उसकी बंध तत्व संबंधी भूल चलती है। यानी जो पुण्य कर्म के उदय से अनुकूलता मिलती है, पाप कर्म के उदय से प्रतिकूलता मिलती है, और ये संयोग जो पर पदार्थ है उसमें ये इष्ट अनिष्ट मानता है, मानने की बात चलती है। पर पदार्थ जो पुद्गल है उसमें कौन से अच्छे और कौन से बुरे है? फिर अरे पुद्गल तो पुद्गल है,
अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल,
उसमें कोई जीव के अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं है, इसने उसमें कल्पना की, ये मेरे लिए अनिष्ट है और ये इष्ट है, तो ये उसकी जो कल्पना है यही उसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। क्योंकि आश्रव से बंध होता है और जो बंध है कर्म का बंध होता है उसका उदय आने पर उसका फल मिलता है। जो कर्म के फल में अच्छा बुरा मानता है वो कर्म बंध को अच्छा मानता है, यानी पुण्य अच्छा है पाप बुरा है, यानी उसमें उसने डिफरेंशिएट कर दिया, ये भी उसकी बंध तत्व की भूल। देखो नहीं समझे? किसी ने छुरी से आपका प्राण लेना चाहा तो सोने की छुरी अच्छे का लोहे की कोई तो इसमें दो बंध में ये डिफरेंशिएट करता है, पुण्य बंध अच्छा और पाप बंध बुरा, ख्याल है ना। ये उसकी बंध तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है, बंध तो बंध है वो बुरा ही है परंतु ये उसको अच्छा मानता है।
अशुभ से तो शुभ अच्छा है,
हाँ वो अपेक्षित कथन है। कैसे? क्योंकि अभी शुद्ध भाव नहीं प्रकट, यानी मान्यता में क्या लेना है, शुद्ध अच्छा, मान्यता की बात चल रही
है,
मान्यता। परंतु ये जो उपदेश की भाषा आती है ना, उपदेश के अनुसार उसको भाव नहीं होते, फिर भी क्या कहेंगे हम, बच्चों को सिखाना है क्या करना है, तो हम कहेंगे पाप मत करो, पाप से बचो, तो वहां कहेंगे मंदिर में चलो, ऐसा भी उपदेश होगा ना वहां पर। कोई बात नहीं,
हाँ
रुकना है क्या? हाँ चलो चलो, अभी हम संवर तत्व संबंधी देखते, विपरीत मान्यता क्या है। हाँ देखो, अभी संवर कहना किसको, आश्रव का अभाव वह संवर है, यानी मोह राग द्वेष की उत्पत्ति न होना ये संवर है। अब इसकी क्या मान्यता हो रही है, नास्तिक का कथन है ना, कौन सा, मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना ये संवर कहा, ये नास्तिक का कथन है, निगेटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव क्या कहेंगे, शुद्धि की उत्पत्ति होना, वितरागता बिगिनिंग होना उसकी, यह है अस्थि से कथन, कथन की बात चल रही। हाँ
ये पूछता हूँ कि शुद्धि की उत्पत्ति पहले होती है और उसी के समय वो उसका नाश होता है, और क्या पहले है और पीछे है, कि दोनों साथ में होते
हैं, दोनों एक ही समय है ना। हाँ। क्योंकि जैसे प्रकाश की उत्पत्ति ही अंधकार का नाश है, यही बात है ना। अभी लाइट चले गए थे, अंधकार हुआ था यहाँ पर, और प्रकाश के आते ही अंधकार चला गया, तो पहले क्या हुआ,
दोनों साथ
एक समय दोनों
बोलते थे, आपने बताया
उत्पाद बरोबर, उत्पाद वे ध्रुवता है ना, जो नए पर्याय का उत्पाद है वही पहली पर्याय भी नहीं रही वही उसका व्यय कही, ऐसा नहीं कि वो व्यय निकल जाएगी और बीच में बिना पर्याय का द्रव्य रहेगा और फिर नई पर्याय होगी, ऐसा नहीं होता, समय एक है। तो यह वितरागता की उत्पत्ति होना ही संवर है, तो ये उत्पत्ति हुई कैसे समझा, तो उसी समय अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, आत्मा का अनुभव होता है, सम्यक दर्शन होता है, वितरागता उत्पन्न होती है, ये कैसे समझा, तो अतीन्द्रिय आनंद की वहां प्राप्ति होती है। तो हम कैसे मानते हैं, अभी कोई जो मुनिराज है, सम्यक दृष्टि को भी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति है, जो मुनिराज है उनके तीन कषाय, चार कषाय में से तीन कषाय चोकड़ी चली गई और उनमें प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो रहा है, हम क्या कहेंगे उनको, अरे रे बिचारे, इतने बरसात में निर्वस्त्र अवस्था में दुख भोग रहे हैं, और हम अपने को क्या मानते हैं, हम सुखी है, देखो घर में बैठे हैं, गर्म कपड़े पहनकर बैठे हैं, ठंडी से हम निवारण कर सकते हैं, और हमने चाहे तो एसी लगा सकते हैं, चाहे तो हम हीटर लगा सकते हैं, और वो कैसे बिचारे, ये क्या हुआ हमारा, संवर तत्व संबंधी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। अरे वो तो अतीन्द्रिय आनंद में, प्रचुर आनंद में है वहां पर, हमने कैसे उनकी कंपेयर की संयोगों की अपेक्षा कि ये संयोग अच्छे हैं और वो बुरे हैं, यानी संयोग से सुख दुख माना हमने,
हमारी बुद्धि से उनको क्या बोला,
तोला। यानी वितरागता में अतीन्द्रिय आनंद है, देखो वितरागता यानी अंतर्मुख परिणाम और उसमें जो आत्मा का ज्ञान और आत्मा का आनंद, ये दोनों अविनाभावी है, अविनाभावी यानी जहाँ एक है वहां दूसरा है ही है, आत्मा का ज्ञान ही आत्मा का आनंद है, जहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान है वहीं पर अतीन्द्रिय आनंद है, ये प्रवचन सार में भी आए, बहुत विस्तार से समझाए उन्होंने। तो ये क्या मानता है, वो दुखी है, ये उसने अपनी कल्पना से सोच लिया, ये संवर निर्जरा तत्व संबंधी इसकी भूत रहती है। मुनिराज को दुखी माना इसने, क्योंकि अपने को संयोगों से सुखी माना और वैसे संयोग उनके दुखी नहीं है तो उनको दुखी मान लिया। यानी वो क्या कहेगा, जो संवर को उनके संवर है वितरागता है उसको इसने कष्टकारक माना, दुखरूप माना है, तो जिसको दुखरूप मानेगा उसके लिए क्यों प्रयत्न करेगा, ख्याल है ना, क्योंकि ये सुख छोड़कर मुझे वो दुखी होना ऐसा मानेगा, फिर जो दुखी होना कौन चाहेगा, उसका प्रयोजन ही सुख प्राप्त करना है और उसने सुख ही संयोगों में माना है तो वो संयोगों को क्यों छोड़ेगा, इन संयोगों को तो मुनि अवस्था धारण ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें उसने कष्ट माना है। ऐसा ही कहते, अभी थोड़ा कष्ट सहन करो फिर सुख होगा। अरे जो मोक्ष जो अनंत सुखमय दशा है उसका मार्ग भी सुखमय होगा कि दुखमय होगा, इसने उसकी दुखमय मान लिया है, यानी थोड़ा दुख सहन करते करते सुख हो जाए, ऐसी बात, ये न्याय से विरुद्ध बात है। तो संवर और निर्जरा दोनों ही सुखमय परिणाम है और इसने उसको दुखमय माना है, जो जिसको दुखमय मानेगा उसको प्रकट करने के लिए कोशिश भी नहीं करेगा, वो प्रयत्न किसे चलेंगे, पुण्य करते रहो सुख मिलेगा, यानी आश्रव करते रहो उससे सुखी हो, और ऐसा भी मानेगा आश्रव करते पुण्य करते करते संवर हो जाएगा, और उसी को तप मानता है, उसी को निर्जरा भी मानता है, उसी से होने वाली पुण्य से, है ना, ये सब उसके तत्वों में गड़बड़ चलती है। यानी करता है आश्रव और मानता है संवर होता है, व्रत और तप ये शुभ राग है और उसके करने से वितरागता प्रकट होगी मानता है, इसलिए बाह्य में कुछ न कुछ व्रत अंगीकार करता है और मानता है देखो हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं, अब कभी न कभी तो फल आएगा। उदाहरण भी ऐसा देगा, देखो ये अभी हमने आम बोया है ना, ये वृक्ष है अभी इसी को आम लगेगे, हाँ
तो काम
हाँ ये इसके उसी का फल आएगा,
काम
लाग सकते गुठली बोई है
वृक्ष होगा तो हमने जो वैराग्य लिया है
तो उसमें उसका फल आएगा,
उसका फल आएगा
ऐसा मानते हैं, संवर निजरा का फल आएगा।
जो सुलग जी हुए ना उसको ये सवाल पूछा गया, उसने ये जवाब दिया,
ऐसे होता है कि हमको वो फल मिलेगा, उस फल आएगा क्योंकि हमने ये शुरुआत की है, क्योंकि व्रत तप ये शुरुआत नहीं है, शुरुआत तो सम्यक दर्शन से होती है, इसके तो एकड़ा बिना ना मिंडा का है ना, हाँ कि सम्यक दर्शन के बिना जो व्रत तप होते हैं उसको जब तक सम्यक दर्शन नहीं तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सम्यक दर्शन रूपी एक पीछे लगा फिर उसकी वैल्यू 2-0 है कि 4-0 है उसकी वैल्यू होगी, बिना सम्यक दर्शन की कोई वैल्यू नहीं है। और बाह्य व्रत तप करने से हम ज्यादा आगे बढ़ेंगे, हम फास्ट चले जाएंगे, हमको जल्दी होगा, ये मान्यता ही मूल में मिथ्यात्व है। क्या कहा, पहले में पहले नहीं नहीं आप तो विचार करो हम पहले व्रत करेंगे तो हम और फास्ट पहुंचेंगे आपके से, ये बात मिथ्या मान्यता है। ये सारी उसके तत्व संबंधी भूले चल रही है, यानी ये जिससे आश्रव और बंद होता है, शुभ परिणाम से आश्रव भी होगा और बंद भी होगा, और उसका क्या माना, उससे संवर होना माना, ख्याल में आता है ना, क्या इसकी भूल कहाँ पड़ी है। देखो एक ही कारण से दो अलग अलग कार्य हो गए कि नहीं हो गए, हमने शक्कर डाली तो चाय मीठी भी होगी और खट्टी ये खारी भी होगी, तो अग्नि से पानी गर्म भी होगा और शीतल भी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या हो रहा है, शुभ भाव कर रहा है, व्रत तप कर रहा है, उससे बंद होगा, तो उसी से बंद होगा और उसी से संवर निर्जरा होगी ऐसा मानता है, महाव्रत से निर्जरा होगी संवर होगा, ये कैसे शक्य है। उसके साथ वहां जो वितरागता है उससे ये संवर और निर्जरा होगी, वितरागता तो है नहीं और अकेले बाहर जो हमने देखा ना वो कूट रहा है, फोतरा फोतरा
फोतरा खांडे।
किसी एक भाई ने देखा दूसरी स्त्री क्या कर रही है, तो वो चोखा लेके वो काट रहे थे, ऊपर सारे वो फोतरा है छाल उसकी, तो गई और उसने उसी को कूटना प्रारंभ किया, तो उसके हाथ में क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। ऐसे ही इन्होंने बाह्यता केवल व्रत अंगीकार किए हैं और अंदर तत्व का विचार नहीं है, तो उनको सम्यक तो कैसे हो सकता है? तत्व विचार से ही सम्यक तो की प्राप्ति होगी। आप व्रत लेते हैं तो ले लो, परंतु उसको संवर और निर्जरा मत मानो, ये बात कहना चाहते हैं। व्रत करने का निषेध नहीं है, क्या मानकर कर रहे हो? आश्रय बंद है, वो संवर निर्जरा नहीं, ये मूल में मूल मान्यता में लेना है। लोग मान्यता की बात आचरण पर लगाना चाहते हैं, या करना चाहते हैं फिर छोड़ना चाहते हैं, या ना करने की बात है ना छोड़ने की बात है, उसको सही मानने की बात चल रही। सात तत्वों को जैसा है वैसा मान लो, बस यही बात चल रही। पहले में पहले यही करना है। अब निर्जरा तत्व संबंधी क्या विपरीत मान्यता है? क्योंकि तत्वार सूत्र पढ़ा है, उसमें लिखा है तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है, और तप क्या है? इच्छा निरोध स्तपा। तो इच्छा निरोध करना यानी क्या है? इच्छाएं दबाना। इच्छा दबाना तप नहीं है। जब जीव अंतरंग में लीन है तब उसके इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती, उसको कहेंगे इच्छा निरोध, और वो तप है। अंतरंग में कुछ लीनता है नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, और तप से निर्जरा होती है। तप से फिर कितने उपवास करेंगे तो कितनी निर्जरा होगी, ऐसा हिसाब लगाता है। वो लिखना तो उन्होंने तो सही लिखा है, तपसा निर्जरा तप कहना किसे, इस पर ही ये बाह्य तप को ही तप मान लेता है। ये स्वाध्याय संयम तप ये सब सारी बातें हैं।
गलत मीनिंग हमने निकाला,
हमने निकाला। देखो देवलाली में हमने भूगोल का शिविर लिया था, तो वहाँ ये बात चल रही थी कि 33,000 वर्ष के बाद वो सरवार सिद्धि वालों को भूख लगती है और फिर वो गले में से अमृत झरता है। तो 33,000 साल के बाद वो तो इतना उपवास हुआ ना उनको, तो एक महिला ने पूछा तो उनको तप नहीं है क्या?
कितना तप करते होंगे?
कितना तप कर, अरे उनका तो गुणस्थान चौथा है, यानी हमने उपवास नहीं खाने को तप समझा है। ये नहीं खाने में क्या तप है? तप तो अंतरंग में प्रतपन यानी अंतरंग में तपना, काहे से तपेंगे? वीतरागता से। तो आत्मा में लीनता है, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग लेना है, वह तप है, उसे तो जानते नहीं है, और बाहर में नहीं खाने को तप समझ लिया है। तो वह कहते हैं पेट में खाड़ा पड़ी जाए तो पन इन्हें शू वड़ू ने यानी नहीं खाने से शारीरिक जो कोई उसमें चेंजेस हो गए तो हो गए, इसको क्या मिला उससे? ये खोटी मान्यता के कारण, और मानता है कि मैं कर रहा हूं, यानी क्यों करता है? क्यों निर्जरा के लिए कर रहा है, परंतु इसको सही ज्ञान नहीं है, सही श्रद्धा नहीं है, तो इसकी भूल हो रही है। इसकी बात और कल हम देखेंगे, अभी समय होने को आया अपना। बोलो 24 भगवान की। गिरती भी होगी ना कहीं कहीं?
बहुत बहुत
बहुत जोर
है, मैंने एक झाड़ता हूँ जला दिया।
अच्छा, जय 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 जय।